ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्ताईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊजु बिल्लाहि मिन شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين
میرے قابل احترام مسلمان بھائیوں، ابھی اس وقت آپ کے سامنے ہمارے عزیز مولانا مفتی محمود صاحب نے دعوت و تبلیغ کے اس عمل کا جو خلاصہ پورے اختصار کے ساتھ بڑے شاندار طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیا، مجھے تو انگریزی کا ایک لفظ بھی نہیں آتا، انہوں نے تو جگہ جگہ انگریزی کے جملے استعمال کیے، جس کی وجہ سے آپ کے لیے بات کو سمجھنا بھی بہت آسان ہو گیا۔ میں تو دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ یہ اپنا بیان اور بڑھاویں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ مقصد تو فائدہ ہے، شخصیت اور آدمی مقصود نہیں ہے، لیکن بس انہوں نے تو ختم کر دیا۔ بہرحال یہاں حاضری ہوئی ہے تو اسی نسبت سے ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، شروع میں مولانا نے جو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان اور اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی، اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنے والدین کی نسبت سے عطا فرمائی۔ بعض جیسا کہ بتلایا گیا آپ کو، وہ ہیں جو اسلام کی اسٹڈی مطالعہ کر کے اور اس کی حقانیت کو خوب سوچ سمجھ کر جب ان کے سامنے واضح ہوتی ہے تو ہدایت اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں، لیکن ایسے مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ بڑی تعداد تو وہ ہے جو بائی چانس مسلمان ہیں، بائی چوائس نہیں، ان کی برکت سے یہ دو آ جاتے ہیں، کچھ توجہ کر لیتے ہیں مفتی صاحب، تو ہمارا حال بھی ایسا ہے۔ لیکن یہ نعمت चाहे बाय चांस मिले चाहे बाय चॉइस, बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाई, इसकी हमें कदर करनी है। कितनी बड़ी नेमत है वो मैं ज़रा बतलाना चाहता हूँ, एक वाकया जिक्र करूँगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में अल्लाह ताला ने जिन हजरात को इस्लाम और ईमान कबूल करने की तौफीक अता फरमाई, उनमें हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब नवरल्लाह मरकदहु पालनपुरी, वो एक वाकया बयान फरमाया करते थे। उन्हीं के हवाले से मैं बयान करता हूँ, खुद तो किसी किताब में देखने की नौबत नहीं आई। फरमाते थे कि एक मरतबा हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु खुशी के मारे नाच रहे हैं। किसी ने पूछा, ये आप क्यों नाच रहे हो? कहा कि हिदायत अल्लाह तबारक ताला ने अपने हाथ में रखी, इसलिए बिलाल को ये चीज मिली। अगर इंसानों के हाथ में होती तो बिलाल को कौन पूछता? बिलाल का ताल्लुक वैसे भी इंसानों की जिस कैटेगरी से है, तो आजकल दुनिया में दो हिस्से कर रखे हैं, काले और गोरे। उसमें एक तो कालों से मेरा ताल्लुक है और साथ ही साथ मैं तो गुलाम। अगर इंसानों को कहा जाता कि ये लोगों को दो, जैसे इस वक्त अगर कोई कुछ चीज़ें हो इस मजमे में तकसीम करने के लिए इनके हाथ में दे दूँ मैं, और वो इतनी नहीं है कि सबको पहुँच सके, बल्कि ये देख रहे हैं कि सबको पहुँच सके इतनी नहीं है, तो उस सूरत में वो चेहरे देख देख करके वो बांटेंगे अपनी मर्जी से। तो कहा, अगर हिदायत इंसानों के हाथ में होती तो भला ये बिलाल के हिस्से में कहाँ आती? कुरान में बारी ताला का इरशाद है, उसकी उस इरशाद को बयान करने से पहले उसके ऊपर जिस आयत जिस पस मंज़र में नाजिल हुई है वो भी बैकग्राउंड में नाजिल हुई है, वो भी मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब, जिन्होंने पूरी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिमायत की, परवरिश भी उन्होंने ही की थी, उनकी जिम्मेदारी भी उन्होंने ही ले ली थी अपने अब्बा अब्दुल मुत्तलिब के पास से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के पास से। और आप पर जब वही का सिलसिला नाजिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की दावत देना शुरू किया, तो आपके खिलाफ पूरे मक्का मुकर्रमा में और कुरैश में जो माहौल तैयार हुआ और लोग आपके दुश्मन बने, जान के दुश्मन, और बाकायदा लोगों ने आकर अबू तालिब से मुतालबा किया कि इनको हमारे हवाले करो, लेकिन अबू तालिब ने साफ इनकार कर दिया कि हम जान दे देंगे लेकिन इनको आपके हवाले नहीं कर सकते। बहरहाल आप सब जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत से जो भी मुसलमान वाकिफ है अच्छी तरह जानता है कि अबू तालिब ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा खिदमत की, उनकी परवरिश की, उनको साथ दिया, उनको सपोर्ट दिया, लेकिन वो मुसलमान नहीं हुए, ईमान नहीं लाए। किताबों में है कि जब उनकी आखिरी घड़ियां थी, मौत का वक्त करीब आया और मक्का मुकर्रमा में ये खबर फैली कि अबू तालिब का आखिरी वक्त है, तो अबू जहल ने अब्दुल्ला इब्ने अबू उमैया से कहा कि अब्दुल्ला इब्ने अबू उमैया जो है वो अबू तालिब के भांजे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फूफीजाद भाई, और उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के अल्लाह तिया ने बाप शरीक भाई। उद्धव सलाम के बड़े दोस्त थे, लेकिन जब आप पर वही का सिलसिला शुरू हुआ और आपने इस्लाम की दावत देना शुरू की तो आपके पक्के दुश्मन बन गए। यहां तक कहने लगे कि अगर मैं अपनी आंखों से देखूं कि आसमान तक सीढ़ी लगी हुई है और आप ऊपर से जो है कुछ लेकर के आ रहे हैं तो अभी मैं आप पर ईमान नहीं लाऊंगा। ये लेकिन अल्लाह ने बाद में उनको ईमान की तौफीक अता फरमाई। तो बहरहाल अबू जहल को जब पता चला तो वो अब्दुल्लाह इब्न अबू उमैया को अपने साथ लेकर के गया अबू तालिब के पास, कहा कि कहीं आखिरी वक्त में इनके भतीजे उनको कलमा ना पढ़वा दें। चुनांचे वहां जब पहुंची ये दोनों तो अबू तालिब जहां लेटे हुए थे वहां दो आदमियों के बैठने की जगह थी फकत, ये दोनों वहां जाकर बैठ गए ताकि अब हुदूस सलासम को पता चले कि आखिरी घड़ियां और वो आप भी आए तो आपको बैठकर इत्मीनान से बात करने का मौका न मिले। चुनांचे ऐसा ही हुआ, हुदूस सलासम को भी पता चला, आप भी तशरीफ लाए और इसी उम्मीद के साथ और यही इरादा करके का मैं उनकी जबान से कलमा पढ़वा लूं। जब देखा वहां बैठने की जगह नहीं है, खड़े खड़े उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से कहा कि चचा जान कुल कलिमतन अहद जो बेका लहा इंदल्ला अहद जो बेहा लका इंदल्ला, एक कलमा आप पढ़ लीजिए कि उसके जरिए से मैं अल्लाह के हुजूर आपके लिए कुछ हुज्जत कर सकूं। इसलिए कि कलमा जो है वो तो जरूरी है, अल्लाह तबरक ताला ने जन्नत के अंदर दाखिले के लिए कलमे को जरूरी करार दिया। कोई भी हो बगैर कलमे के जन्नत में जा सकता नहीं। भाई दीनी आप यहाँ सरकारी जो है किसी सरकारी किसी शोबे में खाते में कोई जो है कोई अच्छी जगह अच्छी आसामी खाली हुई ऊंचे दर्जे का कोई है और उसके लिए हुकूमत की तरफ से एडवर्टाइज भी दी गई अखबारात के अंदर कि भाई इसके लिए हमें एक आदमी की ज़रूरत है, तो जाहिर है जिस काम के लिए एडवर्टाइज और इश्तहार दिया गया है उसके लिए बाकायदा कुछ सलाहियतें हुआ करती है, उसके पास ये सट्टी हो ये सट्टी हो ये हो फलाना हो, अब वो जिसके पास हो वो ये दे। आपका कोई अजीज था उसने भी उसके लिए दरख्वास्त दे दी और आपको जहाँ ये इस के लिए लोगों को इंटरव्यू लेने का जिस ऑफिसर को इख्तियार दिया गया उस ऑफिसर से आपकी बड़ी पक्की दोस्ती, जो कहें वो करता है, आप वो आपकी बात मानता है, आपके उस भतीजे ने भांजे ने जिसने ये दरख्वास्त दे रखी आपसे आकर कहा चचा मामू मैंने ये जो एडवर्टाइज आई थी मैंने दरख्वास्त दी है और जिस ऑफिसर के पास इंटरव्यू है वो आपका पक्का दोस्त, आप जैसा कहें वैसी बात करता मानता है, तो ज़रा उसको कह दीजिए कि वो मुझे पास कर दे। इसके लिए आप पहले पूछेंगे कि बेटा तेरे पास ये सर्टी है क्या? सर्टी तो नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, सर्टी नहीं है तो ऑफिसर से मेरे कितने ताल्लुकात, क्यों ना हो मैं कुछ कर सकता नहीं। अल्लाह ताला ने एक कानून बना दिया कि बगैर कलमे के कोई जन्नत में जा सकता नहीं। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से साफ साफ कहा कि आप एक कलमा पढ़ दीजिए बस, मैं फिर अल्लाह ताला से सिफारिश करूँगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही तो अबू जहल फौरन बोल पड़ा कि अबू तालिब बस आखिरी घड़ी में आप अपने अब्बा का दाद मजहब छोड़ेंगे, मक्के की औरतें और बच्चे क्या कहेंगे कि आग से डर गया और कलमा पढ़ लिया। आर आर देखो आर यानी क्या, शर्म। आजकल दीन पर अमल के मामले में सबसे बड़ी रुकावट जो है ना हमारे लिए भी दीनदार लोग भी, एक तो हजरत थानी रहमतुल्लाह अली फरमाते हैं एक तो दीन वो है जो मारूफ है, दीन के वो आमाल जो सब करते हैं हम भी करेंगे, उसमें तो किसी को कोई रुकावट आती नहीं। लेकिन सब नहीं करते। शादी ब्याह के मौके पर बड़ी जो है रस्म व रिवाज से शादियां होती है पूरे इलाके में। अब आप दीन पर अमल करने वाले हैं, आपसे कोई कहे कि आप तो माशाल्लाह बड़े दीनदार हैं, आपके घर की शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक होनी चाहिए, वहाँ आपकी आजमाइश होती है। आप सोचेंगे भले मैं नमाज पंच वक्त पांचों वक्तों की पढ़ता हूँ, उमरा और हज भी करता हूँ, ज़कात भी अदा करता हूँ, जमात में भी जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन अब ये शादी का मसला आ गया, उसमें अगर ये रस्म व रिवाज नहीं करूँगा लोग क्या कहेंगे? वो एक जुमला, एक ही जुमला, कौन सा? लोग, ये लोगों का ला खाफून फिल्लाह लौमत लाई, जो अल्लाह के मखसूस बंदे होते हैं अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के मामले में किसी की मलामत की परवाह नहीं करते। बस ये एक बड़ी रुकावट हर एक के लिए होती है। ये अब होता दीन का मामला, अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर नया दीन इख्तियार करना। हम तो मुसलमान हैं, हम मानते हैं कि ये सुन्नत है, शादी का ये तरीका सुन्नत है, हम जबान से कहते हैं, लेकिन जो है पूरे समाज के अंदर पूरी सोसाइटी का एक तरीका जो बना हुआ है उसको छोड़कर उस तरीके के मुताबिक निकाह, वो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम सोचते हैं क्या होगा, हालांकि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये इस्लामी तरीका मानते हैं सब कुछ, उसके बावजूद तो जो सिरे से मुसलमान ही नहीं है उसके लिए इस्लाम का कबूल करना कितना बड़ा मुजाहदा, बहुत बड़ा मुजाहदा, मामूली चीज़ नहीं। तो बहरहाल अबू जहल ने क्या कहा कि अबू तालिब मक्के की औरतें और बच्चे क्या कहेंगे कि अपना बाप दादा का दीन छोड़ दिया और आग से डर गया, क्योंकि दावत जो दी जाती थी यही थी कि अगर ईमान नहीं लाओगे तो जहन्नम में जाओगे। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते रहे, लेकिन अखीर में अबू तालिब की जबान पर एक ही जुमला था, अख्तारुन्नार अलल आर, आग आर के मुकाबले में, यानी लोग ये बातें करें इसके मुकाबले में मैं आग यानी जहन्नम को तरजीह देता हूँ, इख्तियार करता हूँ, और इसी हालत में दुनिया से गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसका बड़ा गम हुआ कि जिन चचा ने पूरी जिंदगी मेरी हिमायत की, सपोर्ट किया, मुझे तकवियत पहुँचाई, आज वो दुनिया से बगैर ईमान के जा रहे हैं। तो कुरान पाक में अल्लाह तबरक तआला ने आयत नाजिल फरमाई, इन्नका ला तहदी मन अहबबत वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, ए नबी आप जिसको चाहें हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है, हिदायत अल्लाह के हाथ में है। हकीकत तो यह है कि ये ईमान जो हमको अल्लाह ने दिया है, चाहे वो अपने बाप दादा की तरफ से हमको मिला हो, लेकिन एक ऐसी अजीम दौलत है कि दुनिया की कोई दौलत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अब अल्लाह ने ये तो हमें मुफ्त में दे दिया है, अब इसकी हिफाजत और इसके ऊपर अमल का अहतमाम, इसके लिए हमें जो है अपने आप को पेश करना है। तो वह जो मैंने आयत करीमा आपके सामने पेश की थी, पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीन आमनू उदख़ुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, यानी हमारी जिंदगी पूरी, जिंदगी का हर शोबा, हमारी इबादतें, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये गोया अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, हमारे मामलात अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, हमारे जितने भी मामलात हैं, दुकानदारी करते हैं, तिजारत करते हैं, जो भी लेन देन होती है वो सब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, उसमें एक चीज़ भी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं हो। ये ना सोचे आदमी कि मौल साहब आप तो यूं कहते हैं कि इस तरह करो, मैं करने जाऊंगा तो क्या होगा, मैं तो मेरी तिजारत नहीं चलेगी, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। लोगों को जब ये कहते हैं ना इस्लामी तरीके के मुताबिक करो, तो ये जुमला बोलते हैं, हमारा वो यकीन होना चाहिए। अभी हजरत इब्राहिम अला नबीना वालसलाम का नाम आपने सुना, अल्लाह ताला ने आप हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया था कि आप अपनी बीवी हजरत हाजरा और अपने दूध पीते बच्चे हजरत इस्माइल को, वो रहते थे वहाँ शाम के अंदर, शाम का इलाका बड़ा सरसब्ज़ शादाब हरा भरा, आप हम जहां कहते हैं वहां उनको छोड़ करके आओ। हजरत जिब्रील लेकर चले हैं हजरत इब्राहिम को, इनके इनके घर वालों और बेटे को लेकर। अब जब आपको एक इलाका आता है, हजरत इब्राहिम के पूछते हैं यहाँ तक, नहीं यहाँ आगे, यहाँ तक के मक्का मुक्का, जहाँ इस वक्त काबतुल्ला है, उस वक्त तो कोई आबादी नहीं, कोई इंसान वहां रहता नहीं था। और ये पहाड़ियों के बीच में जहां एक घास का तिनका नहीं उगता था, वहां ला करके कहा कि यहां आप छोड़ो। चुनांचे वहां अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ा, एक थैली के थैले के अंदर खजूरें थी वो दी, एक मशकीजे के अंदर पानी था और चले। ये भी नहीं कहते कि मैं आपको यहाँ रहना, मैं जाता हूँ, चलने लगे रहते थे हाजरा पीछे पीछे, आपको यहाँ, आप हमको यहाँ कहाँ छोड़ करके जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, खामोश। वो पीछे पीछे चल रही है और ये पूछती जा रही है, यहाँ तक कि उन्हीं के दिल में बात आई, उन्होंने अर्ज किया क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो फौरन हजरत इब्राहिम ने कहा जी हाँ अल्लाह का हुक्म है। कहा इज़न ला युज़ी अना, बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है, उसके अल्फाज हैं, अगर अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें हरगिज ज़ाया और बर्बाद नहीं, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं। एक औरत का यकीन देखो, कहाँ आज हम हरे इस आबाद शहर के अंदर कहीं सफर में जाना हो तो अपने घर में बच्चे हमारे मौजूद है, पूरा मोहल्ला आबाद है, पास पड़ोस में हमारे मिलने वाले रहते हैं, तो अभी हम फिक्र करते हैं कि इनको यहाँ कहाँ छोड़ के जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगा सफर में। लेकिन वहाँ कोई नहीं ऐसी जगह, लेकिन उस औरत का यकीन देखो, तो उसी यकीन का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने ये नवाजा और उनकी जो है नस्ल से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजा और ये पूरे दीन की दावत। तो बहरहाल कहने का हासिल ये है कि हमें अल्लाह के ऊपर एतमाद की ज़रूरत है, हमें उस यकीन को ताज़ा करने की ज़रूरत है, और इसी यकीन को बनाने के लिए और दीन पर गोया चलने का मिजाज अपने अंदर पैदा करने के लिए ये सिलसिला जो शुरू किया गया है दावत व तबलीग का, और उसी के लिए आपसे मुतालबा होता है। और दीन खाली नमाज पढ़ लेने का नाम नहीं, सारी चीज़ें हैं दीन, तो सब ही उसके अंदर, सबके हुकूक की अदायगी, माँ बाप के साथ किस तरह पेश आना है, बीवी के साथ किस तरह पेश आना है, अपने भाई बहनों के साथ किस तरह पेश आना है, अपने पड़ोसियों के साथ किस तरह पेश आना है, अजनबियों के साथ किस तरह पेश आना है, यहाँ तक कि गैर मुस्लिमों के साथ भी हमारा सुलूक जो है बहुत इज्जत और इकराम वाला होना चाहिए। जैसा कि अभी आपने सुना कि जो इकराम के साथ लफ्ज मुस्लिम लगा है, उसका मतलब ये नहीं है कि खाली मुसलमान के साथ हम अच्छा सुलूक करें, हमें तो इस्लाम ने हर इंसान के साथ अच्छा सुलूक करने का हुक्म दिया है। क्योंकि एक मुसलमान आम तौर पर मुसलमानों के दरमियान में रहता है, अकेला नहीं रहता, इसलिए वहाँ ये इकराम का इज़हार लफ्ज मुस्लिम, यहाँ हदीस में आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल मुस्लिमो मन सलम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से पहुँचने वाली तकलीफ़ों से दूसरे मुसलमान महफूज हों, बचे हुए हों। वहाँ तमाम शारहीन ने, उस हदीस की शरह करने वाले उलमा ने लिखा है, उसका मतलब ये नहीं है कि किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि दूसरी रिवायतों के अल्फाज हैं, अल मुस्लिमो मन सलम नास मिल लिसानी व यदिही, मुसलमान वो है कि उसकी ज़बान और हाथ की तकलीफ से पहुँचने वाली तकलीफ़ों से दूसरे लोग क्या हों, महफूज रहें। कोई मुसलमान की कैद नहीं है। तो बहरहाल आप यहाँ जिस मुल्क में रहते हैं, या आपका ज़्यादातर वास्ता जो है वो गैर मुस्लिमों से पड़ता है, और हम खुद जो है उनके हमारे साथ सुलूक की तारीफ करते हैं। देखो कहीं रास्ते के अंदर आपकी गाड़ी को कोई जो है हादसा पेश आ गया, पंक्चर हो गया, और रास्ते में आप खड़े हैं, आप इन गोरों को देखेंगे कि वो आपको खड़ा हुआ देखेंगे तो गाड़ी चला कर नहीं, फौरन गाड़ी रोकेंगे, पूछेंगे मेरी मदद की ज़रूरत है, क्या है? हम ऐसा करते, हालांकि ये अखलाक तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बतलाया है। तो ज़रूरत इसकी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जिन अखलाक की तालीम दी है, उन अखलाक को हम अपनाएं, वही अखलाक अपने घर में भी हों, अपने माँ बाप के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, घर के बाहर अपने पड़ोसियों के साथ, मुसलमानों के साथ, और आगे गैर मुस्लिमों के साथ, हर एक यहाँ तक के जानवरों तक के साथ भी जो अच्छा सलूक करने का हमें हुक्म दिया है, उसके मुताबिक हमारा हाल होना चाहिए। अगर इसको हमने अपना लिया तो हमारी ज़िंदगी खुद दावत है, ज़बान से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इसी इलाके के अंदर ये जो जावा समतरा और जो इंडोनेशिया वगैरह का और चाइनी का ऊपर का इलाका है, वहाँ जो इस्लाम कैसे आया, वही मुसलमान ताजिरों के अखलाक के ज़रिए से अल्लाह ताला ने वहाँ के लोगों को इस्लाम की नेमत से नवाजा है। तो ज़रूरत है कि हम अपना अमल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक, तरीक़े के मुताबिक बनाएँ, तो गोया यही हमारी तरफ से एक दावत हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।